दिल में कोई सितम गए अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों बिछा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों बिछा गया है।
ओम शांति। विदेश के एक लेखक ओ हेनरी ने 1905 में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लिखी है, जिस पर अनगिनत फिल्में बनी, नाटक बने अलग अलग भाषाओं में। कहानी का शीर्षक था द गिफ्ट ऑफ मेजाय, जिसमें दिखाया है एक युगल है, गरीब है, दोनों का आपस में बहुत प्यार है। क्रिसमस नजदीक है और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। पति देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके बहुत लंबे बाल है, पर जिस तरह की कंघी होनी चाहिए वो विशेष कंघी उसके पास है नहीं। और पत्नी देखती है कि उसका जो पति है वो सोचती है उसको मैं क्या दूं। उसके पास घड़ी तो होती है, पुराने जमाने की कहानी है, पर घड़ी में टंगाने की चेन नहीं होती है। वो घड़ी यहां लटकाता है हमेशा। 1905 में लिखी हुई है ये घटना है। तो दोनों सोचते हैं हम एक दूसरे को क्या सौगात, क्या गिफ्ट दे। तो पति सोचता है मुझे उसे कंघी देनी चाहिए, एक स्वर्ण कंघी, अच्छी सी कंघी, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हैं पत्नी के। तो वो अपनी घड़ी बेच देता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे अपनी पत्नी के लिए कंघी खरीदता है। पत्नी सोचती है मैं अपने पति को क्या दूं, उसके उसको देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो मार्केट से घूम रही होती है तो देखती है एक जगह पर ब्यूटी पार्लर है। वो सोचती है मैं अगर अपने बाल बेच दूं तो कितना अच्छा होगा, इतने लंबे घने बाल है। तो अंदर जाती है, पूछती है कि क्या मुझे इस बाल के बदले कुछ पैसे मिल सकते हैं। वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और वो अपने पूरे बाल कटवा लेती है और जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने पति के लिए घड़ी के लिए चेन लेके आती है। तो दोनों ही पहुंचते हैं क्रिसमस के दिन। तो वो उसके लिए कंघी लेके आता है पर देखता है उसके तो बाल ही नहीं है, और वो पत्नी उसके लिए वो चेन लेके आती है घड़ी के लिए पर घड़ी है ही नहीं। कहानी में दिखाया है कि वो दोनों वस्तु उन दोनों के लिए व्यर्थ हो गई है, पर इसके बावजूद भी आपस में जो प्यार है उस प्यार में वो किस हद तक जा सकते हैं उसका वर्णन है। इसलिए कहानी का शीर्षक दिया गया द गिफ्ट ऑफ मेजाय। मेजाय अर्थात जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो तीन बुद्धिमान पुरुष सौगात लेके आए थे, द थ्री वाइस मैन, तीन दिशाओं से अलग अलग कि यहां पर ईश्वर पुत्र जन्म लिया है, मसीहा आया है। उन तीन बुद्धिमान व्यक्तियों को मेजाय कहा जाता है और वो अपने साथ बहुत सारे सारी सौगात लेकर आते उस नन्हे से बालक के लिए। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी दिया गया द गिफ्ट ऑफ मेजाय, प्रेम, आपसी प्रेम। और इस दिन को आज के दिन विश्व भर में मनाया जाता है। द वैलेंटाइन डे। बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई है, बहुत सारे धर्म अभी बने नहीं है तब वैलेंटाइन डे की शुरुआत है, तीसरी चौथी शताब्दी में। सेंट वैलेंटाइन डे, जिसने गुलामों की शादी करवाई थी, जहां बंधन थे वहां पर शादी करवाई थी, उस अपराध में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था, पर वो जो जज था उसकी बेटी जो कि अंधी थी उसको भी वो रोशनी देता है, और मरते मरते लिख के जाता है उसको योर वैलेंटाइन। उसका नाम वैलेंटिकस होता है, और तब से धीरे धीरे विश्व भर में ये फैला और द वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो ये दिन प्रेमियों का दिन है, प्रेम दिवस, और अव्यक्त बाप दादा की पूरी मुरली वैलेंटाइन डे पर है, जिसमें ओम शांति भवन पूरा सजाया गया था, जिसकी वीडियो भी है, जिसमें बाबा का अवतरण हुआ था। वैलेंटाइन डे 14 तारीख को था, बाबा 13 की रात को आए थे 1992, 13 फरवरी 1992, जिसमें ओम शांति भवन पूरा सजा था, बहुत सारे विदेशी आए हुए थे, बहुत सारे डांसेस हुए थे उसमें, विदेशी भाई बहनों ने नृत्य बहुत कुछ किया था, और उसमें चली हुई यह अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 1992। तो आज हम आज के वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में इस मुरली की चर्चा करेंगे, और प्रभु प्रेम जो है, उस प्रेम के क्या आधार है, वो प्रेम कैसे बढ़े, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस मुरली में बाबा ने कहा ये प्रेम दिवस है, बाबा विशेष आए हैं ये दिन मनाने के लिए। ये जो मिलन है बड़ा विचित्र मिलन है, ये जो मिलन है वो क्या करता है, क्या क्या करता है, चलो मुरली से नहीं बाहर से बताओ, भगवान से जो मिलन है उसके क्या क्या फायदे है, क्या क्या विशेषताएं है। इस मुरली में तो बहुत सारी बातें हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, पहले आप बताएंगे प्रभु प्रेम या परमात्मा मिलन क्या क्या कर देता है। खुशी से आत्मा सराबोर हो जाती है, भर जाती है। बाबा ने कहा ये वो मिलन है जो तुम्हें सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, ये वो मिलन है जो तुम्हें सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराता है, ये वो मिलन है जो तुम्हें ऐसी चीजों से भर देता है, इतनी खुशी से भर देता है, इतने प्रेम से भर देता है कि ये प्रेम तुम्हारे बाद में साथ चलता है, ये प्रेम तुम्हें सभी परेशानियों से दूर कर देता है, ये प्रेम तुम्हारा पुराना जीवन परिवर्तित कर देता है, ये प्रेम तुम्हें सर्व प्राप्तियों से भर देता है, ये प्रेम तुम्हें सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, ये प्रेम तुम्हें लीन अवस्था में ले जाता है, सर्व समस्याओं का सामना करने की शक्ति देता है, ये प्रेम तुम्हें सर्व आकर्षणों से ऊपर उठा देता है, जैसे विज्ञान के साधन तुम्हें धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर ले जाते हैं, उसी तरह प्रभु प्रेम संसार के सभी आकर्षण से ऊपर ले जाता है, लवलीन बना देता है। और क्या करता है ये प्रेम, देह भान से मुक्त कर देता है। और क्या करता है ये प्रेम, प्रभु प्रेम क्या करता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, इंद्रिय सुख देख लिए, दुख ही भरा है इंद्रिय सुखों में, आदि अंत वाले है, उस दिन विस्तार से चर्चा की थी इंद्रिय सुखों की, क्या दोष है उनमें, तो ये वो मिलन है, ये वो मिलन मेला है जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से भर देता है। और क्या करता है ये प्रभु प्रेम या प्रभु मिलन? सारी इच्छाएं सारी कामनाएं पूर्ण करने वाला ये मिलन है। नया संसार, नया परिवार, कुल भाषा संडे की मुरली में थी ना, नौ बातें एक, कौन कौन सी? एक परिवार, एक बाप, एक भाषा, एक लक्ष्य, एक ज्ञान, एक दृष्टि, एक वृत्ति, एक धर्म, एक कर्म, टोटल नौ। सब कुछ एक है इस परिवार में। और क्या करता कर देता है ये मिलन? न्यारा बना देता है। और क्या करता है? सबसे विचित्र झूले अतीन्द्रिय सुख का झूला, बाबा ने कहा है उस मुरली में। इस ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, भिन्न भिन्न झूलों में झूलाता है। पहला सुख का, दूसरा खुशी का, शांति का, ज्ञान का, परमात्मा गोद का झूला। और क्या करता है ये प्रभु मिलन? समर्थ बना देता है, शक्तिशाली बना देता है, ताज तख्त और तिलकधारी बना देता है। हर ब्राह्मण आत्मा यहां पर स्वराज्य अधिकारी राजा है। व्यर्थ निगेटिव संसारी चिंतन से मुक्त कर देता है। और क्या करता है ये मिलन? विश्व राज्य अधिकारी पद दिलाता है। और दुनिया से वैराग, वैराग दिलाने वाला मिलन है, सच्चा मिलन। इसमें बाबा ने कहा सच्चा प्रेम अर्थात चाहे संसार की करोड़ों आत्माएं, माया, परिस्थिति, प्रकृति भी तुम्हें अलग करनी चाहे, परंतु तुम अलग नहीं हो सकते। सच्चा प्रेम अर्थात तन मन सब एक। सच्चा प्रेम अर्थात मिटाने वाले मिट जाएंगे पर यह प्रेम नहीं मिटेगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे पर यह प्रेम नहीं मिटेगा। ऐसा ये प्रेम है, ऐसा ये प्रभु प्रेम है। बाइबल में लिखा है नीदर डेथ नॉर लाइफ, नॉर हाइट नॉर डेप्थ, नॉर नेकेडनेस नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपैलिटीज नॉर थिंग्स प्रेजेंट नॉर थिंग्स टू कम नॉर एनी ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग टू कम शैल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम लव ऑफ गॉड। ना कोई व्यक्ति संसार में है, ना होने वाला है, ना ऊंचाई ना नीचाई, ना जीवन ना मृत्यु, ना कोई फरिश्ता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई सत्ता हमें भगवान के प्यार से जुदा कर सकती है। ऐसी कोई सत्ता नहीं है संसार में जो हमें प्रभु से अलग कर सके। We live, we move, we have our being in Him। हम चलते हैं, हम जीते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, वो हम में है, हम उनमें है। ऐसा अटूट अगाध ये प्रभु प्रेम है। तो कैसा है ये प्रभु प्रेम? और लव में क्या हो जाता है? लीन हो जाते हो, खुशी के गीत गाने लगते हैं। और क्या कर देता है ये प्रभु प्रेम? हाँ, तो बाबा ने इस मुरली में भी कहा मांगना बंद, इस मुरली में भी कहा तुम संपन्न बन जाते हो, संपूर्ण बन जाते हो, सारी प्राप्तियां तुम्हें हो जाती है। उस संडे की मुरली में भी था अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के संसार में। ये एक ऐसा संसार है जिसमें कोई अप्राप्त अलभ्य जन जन की प्यास बुझ जाती है। आत्मा की सबसे गहरी प्यास है मिलन की, सबसे गहरी प्यास। संसार में उसने जो भी विस्तार किया है किस लिए किया है, जो संबंध बनाए हैं किस लिए बनाए हैं, केवल कि उसके अंदर प्यास है मिलन की। पर उसे वो प्यास कहां बुझानी है पता नहीं, इसके लिए शरीर के तल पर बुझाने की कोशिश करता है। परंतु वो उसने उसको और ही पतित विकारी बनाया, और ही आत्मा गर्त में गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। और क्या करता है ये प्रभु प्रेम? ये प्रभु प्रेम क्या करता है ये पूछ रहे हैं। नीचे से ऊपर उठा देता है, और क्या करता है ये? लेने वाले थे, मांगने वाले थे, भिखारी थे, आध्यात्मिक दरिद्रता से ग्रसित थे। ये प्रेम हमें स्पिरिचुअल रिचनेस से भर देता है, आध्यात्मिक संपन्नता से। फिर मांगना बंद, फिर भीख मांगना बंद, किसी के सामने गिरना नहीं, दाता बन जाते हैं। ऐसा ये प्रभु प्रेम है। और क्या करता है ये प्रभु प्रेम? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है और सेवा कराता है। प्रेम अर्थात सेवा। जिसमें प्रेम है वो दूसरों में वो प्रेम भरेगा। जिसमें प्रेम है वो क्या करेगा? दूसरों में भी ये प्रेम भरेगा। आज सुबह की साकार मुरली, योग बल से पांच चीजें होती है। पहला, आत्मा की ज्योति जगती है। दूसरा, स्वयं पावन बन जाते हैं। और तीसरा है सेवा, दूसरों को पावन बनाने की सेवा। तत्वों को भी पावन बना देते हैं, इस दुनिया को उड़ाए सोने का पहाड़ बना देते हो। चौथा आज सुबह की साकार मुरली, चौथा योग बल विकारों से छुड़ा देता है। विकारी योगी कभी विकार में जा नहीं सकता। जब देहभान में आते हो तब विकार की चेष्टा होती है। सुबह की साकार मुरली। और पांचवा, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आ जाती है। और योग बल का भी आधार है प्रभु प्रेम। अगर प्रभु प्रेम ही नहीं है तो योग बल कहां से जमा होगा? क्योंकि योग की तो परिभाषा ही है प्रेम में मगन हो जाना। योग अर्थात प्रभु प्रेम, उस प्रेम में डूब जाना, खो जाना, अपने अस्तित्व को ही मिटा देना, वो प्रेम है। जैसे नमक का पुतला ये सोचता है मुझे ये देखना है ये सागर कितना गहरा है, पूछता है इधर उधर लोगों से, कोई कुछ बताता है, आखिर वो सोचता है नमक का पुतला मैं खुद ही जाऊं के देखूंगा कितना गहरा है, और छलांग लगा देता है और फिर नीचे 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 जाता है। सोचते रहते हैं, अच्छा इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, जाते 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 वो उसमें खो गया। अब वो दो नहीं रहे, एक हो गया है। गोपिया कृष्ण के प्रेम में ऐसी खो गई है कि वो गोपिया अब कृष्ण खुद बन गई है। कृष्ण गाती गीति कृष्ण ध्याति चित्ति हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते खुद ही कृष्णमयी हो गई है। उद्धव जब पहुंचता है तट पर गोकुल के, गर्मी होने लगती है उसको। क्यों? दिखाया है वो ज्ञानी है, अंदर ज्ञान की गर्मी है, परंतु यहां तो प्रेम की आग लगी थी। उसे इस प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं था। उसके पास तर्क था, बुद्धि थी, सोच थी, विवेक था, परंतु प्रेम तो उससे भी परे की चीज है। प्रेम में कोई तर्क नहीं, प्रेम में कुछ भी नहीं, प्रेम सर्वोपरि है। तो प्रेम इस संसार की सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ चीज है। और उसमें भी प्रभु प्रेम, द लव डिवाइन, इससे बढ़िया, इससे ऊपर, इससे ऊंची, इससे महान इस संसार में कोई चीज नहीं है। संसार में जो प्रेम जिसे वो लोग कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं। उन्हें वास्तव में प्रेम का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। वो मोह को प्रेम कहते हैं, अपनी वासना को प्रेम कहते हैं। और मोह और वासना की जड़ें तो जमीन में है, प्रेम उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाला पंछी है। प्रेम तो निर्मोह है, प्रेम अशरीरी है, प्रेम का शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो ये मुरली पूरी प्रेम पर है। प्रेम दिवस कहा बाबा ने, और बाप आए हैं। बाप यहां आकर सब सजावट देखते, पर सबसे बड़ी सजावट कौन सी है? बच्चों के दिल को बाप देखते हैं। उस सजावट के सामने ये सजावट तो कुछ भी नहीं है, मुरली के महावाक्य है। उस सजावट के आगे ये सजावट कुछ भी नहीं है, ये है सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेमी की निशानी। बाबा ने आशिक माशुक को भी याद किया, वो क्या देखते हैं, जहां देखूं वहां बस तू ही तू, वो ही नजर आते हैं, दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता है। और संसार में लंबी लिस्ट है प्रेमियों की, और उसमें एक विशेषता है, उनकी कभी शादी नहीं हुई। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। एक एक स्टेट में एक एक है, कोई कोई स्टेट में दो दो है। लिस्ट निकालो तो 100 की लिस्ट निकलेगी, इतने हैं। एक एक देश में जाओ तो ऐसी दंत कथाएं हैं, उनके देशों की कहानी है, कैसे वो उससे प्यार करती थी, वो उससे प्यार करती थी, समाज विरोध में था, फिर वो मर गया, उसके पिछाड़ी वो भी मर गया, और फिर दोनों पंछी बन गए और उड़ने लगे। ऐसी भी कहानियां हैं बहुत सारी, चीन में ऐसी अजीब अजीब वो गरीब कहानियां हैं। तो कहने का भाव, आज के दिन अव्यक्त बाप दादा पधारे हैं, अव्यक्त मुरली है 13 फरवरी 1992, वैलेंटाइन डे पर चली हुई शायद एकमात्र मुरली होगी, हमने दूसरी तो और कोई सुनी नहीं। तो बहुत सारा ओम शांति भवन अच्छे से सजाया हुआ है, विदेशी भाई बहनों ने बहुत सारे डांस भी किए, सबने कुछ कुछ पहना हुआ है सभा में, ताज वगैरह, बाबा ने बाबा को भी पहनाया है उसमें, देखा होगा सबने वीडियो। तो प्रभु प्रेम हर दिन, बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाए, और बाप से प्यार अर्थात उसमें ढेर सारी बातें आती है। केवल बाबा बाबा कहना बाप से प्यार नहीं है, बाप से प्यार अर्थात सबसे पहला मुरली से प्यार, ज्ञान से प्यार, उसके एक एक महावाक्य से प्यार, एक एक बात उसने जो कही है उससे प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी श्रीमत से प्यार। बाइबल में वाक्य है, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो केवल आके कहता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले नहीं, पर जो मेरे बाप की मत पर चलता है, ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, वो ही केवल स्वर्ग के राज्य में आएगा, बाकी नहीं। केवल हे बाबा 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 कहने से कुछ नहीं होगा। बाप से प्यार अर्थात पहला मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके योग से प्यार, उसने सिखाए हुए राज योग से प्यार। वो राज योग सीख कर अपने अंदर क्या भरना है, योग बल। आज की मुरली में कहा, संसार में लोग कहते प्रारब्ध बड़ी या पुरुषार्थ, उत्तर है पुरुषार्थ, उसी तरह योग बड़ा या ज्ञान, योग, योग की पूर्व तैयारी ज्ञान है। ज्ञान तो अज्ञान से हमें मुक्त करता है। कल कहा था ना, तुम स्पिरिचुअल सर्च लाइट हो, अज्ञान के पर्दे को हटाने वाले, अपने संपूर्णता की रोशनी से तुम धरती के सितारे हो, तुम श्वास देने वाले हो सुख शांति की, पुरुषोत्तम आत्माएं हो वरदान। तो मुरली से प्यार अर्थात तीसरा योग से प्यार, चौथा भगवान से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार, उसकी सेवा से प्यार। आज की मुरली की लास्ट लाइन क्या है, अच्छा से पहले पप्पू भाई, दिलीप भाई, आज की मुरली की लास्ट लाइन अच्छा से पहले कौन बताएगा, आज की मुरली की लास्ट लाइन अच्छा से पहले, अमित भाई, जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ तब तक क्या, तो आज खाया लिया ना, जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाओ खाना नहीं खाएंगे, ऐसा उमंग उत्साह हो, आज की मुरली की लास्ट लाइन नहीं है। गेस्ट सारे दिन भर आते रहते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं। अगर कोई कहे कि जंगल खाली है, ऐसा हो नहीं सकता, शिकार है ही नहीं। होता है ऐसा? बाबा ने कहा है जंगल भरा पड़ा है और तुम कहते हो शिकार नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? निकल पड़ो शिकार के लिए, मिल जाएगा कोई ना कोई। आखेटक है हम, आखेट पर निकलो, आध्यात्मिक आखेट कहीं ना कहीं। बाप से प्यार अर्थात, चौथा सेवा से प्यार, पांचवा बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। ये कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, संडे की मुरली। ये छोटा अलौकिक सुंदर परिवार है, फर्स्ट लाइन। ये वो परिवार है जो सतयुग से अति न्यारा अति प्यारा है, सेकंड लाइन। ये वो परिवार है जो जिसकी हर आत्मा विशेष है और श्रेष्ठ है। ये वो परिवार है जिसकी हर आत्मा स्वदर्शन धारी स्वराज्यधारी राजा है। ये वो परिवार है जिसकी हर आत्मा ताज तख्त और तिलकधारी है। ऐसा ये परिवार है। क्या हमें लगता है ये ऐसा परिवार? या दोष दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं, निगेटिविटी दिखाई देती है। भगवान जो सब कुछ जानता है, भगवान जिसको एक एक आत्मा की जीवन कहानी पता है, वो कह रहा है कि ये संसार ऐसा है, कुछ तो सत्य होगा। ये वो कह रहा है जिसने इसको रचा है, जो इस संसार का सरबरा मुखिया है। बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, पांचवा छठवा बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, यज्ञ की हर एक वस्तु से प्यार, यज्ञ के पानी से प्यार, यज्ञ की इलेक्ट्रिसिटी से प्यार, यज्ञ के भोजन से प्यार, तो यज्ञ के पेट्रोल डीजल से प्यार। जहां पैदल जा सकते हैं वहां पर पैदल चले जाओ, लाइट बंद, क्लास में बैठे हुए उधर कमरे में फैन घूम रहा है, भोजन करने जा रहे पता नहीं ये कौन सी चीज बनी है, पर खत्म ना हो जाए हमारी थाली में चाहिए, ली थोड़ा खाया और फेंक दिया, चाय ली ग्लास भर के आधा पिया और आधा छोड़ दिया। कपड़े थोड़ा सा दाग लगा, डाला धुलाई के लिए, बार 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 धुलाई के लिए डालते रहते, फ्री में हो रहा है, मशीन से हो रहा है, वेस्ट कर रहे हैं। यहां आए थे पुण्य कमाने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए, सेवा करने के लिए, और यहां पर सारा वेस्ट करके जा रहे हैं, पाप का खाता जमा कर कर। यहां रहना अर्थात बहुत बड़ा पुण्य कमाना है, पर यहां रहकर अगर कुछ वेस्ट करता है कोई, तो वो पाप के खाते में भी तेजी से जमा होगा। एक एक रोटी जो तोड़ी है मधुबन में, उसका हिसाब देना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े का हिसाब लिया जाएगा। यहां आए थे किस लिए? सेवा करने के लिए या लेने के लिए? यहां आए थे किस लिए? तपस्या करने के लिए कि व्यर्थ बातें करने के लिए? यहां आए थे किस लिए? योग करके स्वयं को पावन बनाने के लिए कि वातावरण में प्रदूषण फैलाने के लिए? आए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं? आए थे योगी, महान योगी तपस्वी बनने के लिए और भोग विलास में डूबे हुए हैं। आए थे वैरागी बनने के लिए, पर वैराग तो है ही नहीं, राग उत्पन्न हुआ है सब जगह पर। आए थे घनघोर तपस्या के लिए, तपस्या है ही नहीं, विलासिता में जीवन डूब गया है, खुद भी सोए हैं, दूसरों को भी सुला रहे हैं। बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात दो घर है उसके, एक तो मधुबन और दूसरा उसका अपना परम धाम, और उसकी एक राजधानी भी है। बाप से प्यार अर्थात उसने स्थापित की हुई राजधानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके सेवा केंद्रों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा केंद्रों पर जो निमित्त टीचर्स है उनसे भी प्यार। कौन है वो जो बैठी है वहां पर? वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो बहने हैं। वो साधारण आत्माएं नहीं है, वो महान आत्माएं, संसार की चुनी हुई आत्माएं। चाहे वो कैसी भी हो पर उसने अपना जीवन स्वाहा किया है यज्ञ की वेदिका पर, उससे महान इस संसार में और कोई नहीं। बाप से प्यार, लंबी परिभाषा होगी। ये सारे प्यार एकत्र होंगे तो कहा जाएगा भगवान से प्यार है। बाप से प्यार अर्थात अखंड प्रेम, समग्र प्रेम, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, आधा इधर आधा उधर, लवलीन। इसी मुरली में बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी लवलीन, जैसे वो प्रेमी लवलीन होते एक दूसरे की यादों में डूबे रहते हैं। दिखाया है अकबर, बादशाह अकबर किसी वन में जा रहा है, नमाज का समय होता है, बैठ जाता है, नमाज करते हैं और देखता है अचानक एक स्त्री भागते हुए जा रही है, उसे पता ही नहीं, धक्का देकर निकल रही है, पर वो तो नमाज में बैठा हुआ है, कुछ कहता नहीं उसे क्योंकि वो तो चली भी गई। नमाज जब पूरी होती है उठ के खड़ा होता है, देखता है वो स्त्री आ रही है, वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? वो कहती है क्यों तुम मुझे धक्का देकर गई? वो तो कहती मुझे तो पता ही नहीं मैं आपको धक्का देकर गई। वो कहता है मैं खुदा की इबादत कर रहा था। वो कहती है मेरा प्रेमी आया था, मैं उससे मिलने के लिए भाग रही थी, मुझे पता ही नहीं कौन रास्ते में है, आप बैठे हैं या कौन बैठे हैं, और मैंने आपको धक्का लगाया ये मुझे याद नहीं। पर अकबर उसकी बातें सुनते सुनते उसका क्रोध एकदम शांत हो जाता है कि मेरा ध्यान इसकी तरफ था या उसकी तरफ था, ये मेरी कैसी इबादत है? प्रेम अर्थात किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं, संसार में जो हो रहा है होने दो, आत्मा प्रेम में ऐसी डूब जाए, ऐसी डूब जाए, इसे प्रेम कहा जाता है। तो ये जो परमात्मा प्रेम है, इस परमात्मा प्रेम के 10 आधार हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। लव डिवाइन या डिवाइन लव जिसको कहते हैं, पहला आधार है डिजायरलेसनेस अर्थात कोई इच्छा नहीं, बस ये एक ही प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए, इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, न वस्तु चाहिए, न वस्तु, न जन्म, न धन, न जन्म, न धनम, न सुंदरीम, न कविताम कामय, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भगवत भक्ति रहेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई स्त्री चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, हर जन्म में हे प्रभु केवल तेरा अनन्य प्रेम मुझे मिले, बस यही एक कामना है और कुछ भी नहीं चाहिए। ये वास्तविक प्रेम है, वो प्रेम जो लेन देन करता है, वो प्रेम जो बिजनेस है, वो प्रेम नहीं है, जिसमें खरीद फरोख्त है, वो तो धंधा है, ये प्रेम नहीं होता। संसार में जो लोग कहते हैं ना, वो क्या है, प्रेम है क्या? वो तो बिजनेस है, वो तुम मुझे प्रेम करो मैं तुमको प्रेम करूंगी। कामनाएं है उसमें, स्वार्थ है उसमें, सेल्फिशनेस है। परमात्मा प्रेम एकमात्र प्रेम है संसार का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। पति पत्नी एक दूसरों को सारे जीवन भर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन देने में चला जाता है, जस्टिफिकेशन, स्पष्टीकरण। वो कहता है तुमने ऐसा किया, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं, तुमने गलत समझा, मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लीन दूर करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी होती नहीं क्लियर। उसको कहते हैं क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। बाबा को हमें कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कभी?
कोई अमृत वेला उठा ही नहीं, तो उठ के बाबा को कहता है, बाबा ऐसा मत समझना मेरा आपसे कम प्यार है, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसा कहता है कोई? वो तो ये सोचता है, बाबा को तो पहले ही पता है मैं क्यों ऐसा हुआ, टेकन फॉर ग्रांटेड, पहले ही पता है उसको, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई भी स्पष्टीकरण, ये एकमात्र प्रेम ऐसा है। तो सबसे पहली बात जो इस प्रभु प्रेम में चाहिए वो है कोई इच्छा नहीं, डिजायरलेसनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम चाहिए बस, केवल तुम। भक्त से भगवान प्रसन्न होते, कहते क्या दू तुझे, बोल स्वर्ग चाहिए? कहते ना स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुक्ति दे दू? कहते मुक्ति नहीं चाहिए। फिर क्या दू? संसार की कोई वस्तु दे दू? कहते ना। कोई राज्य दे दू? ना। फिर चाहिए क्या? कहते तुम। बस तू दे दे अपने आप को। भगवान कहता है तू बड़ा चतुर निकला, दूसरे लोग तो मुझे संसार की वस्तुएं मांगती है, मांगते, मैं उनको वो दे देता हूं, वो उसमें खो जाते हैं, मैं फ्री हो जाता हूं। कोई कहता है मुझे राजा बना दो, दे दिया राज्य, जाओ, वो उसमें लगा रहता है, मैं निश्चिंत हो जाता हूं। केवल तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई मनुष्य चाहिए, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई व्यक्ति, कुछ नहीं, ना वस्तु, ना वैभव, कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का, ना पैसा, ना जमीन, ना पुत्र, ना पुत्री, ना पोता, ना पोती, ना बहू, कुछ नहीं चाहिए, सबके सब धोखा देंगे। He that loveth his mother and father more than me is not worthy of me, Jesus कहता है, जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वो तो मेरे लायक ही नहीं है, जाओ उनके पास। He that loveth his brother and sister more than me is not worthy of me, जो अपने लौकिक भाई को, अपनी लौकिक बहन को मेरे से ज्यादा प्यार करता है, आउट, जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे। सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करो। तो सबसे पहली चीज जो प्रभु प्रेम के लिए आवश्यक है वो है डिजायरलेसनेस। और जब ऐसी अवस्था होगी तो सारी संसार की सब चीजें अपने आप मिलेगी, ना चाहते हुए भी मिलेगी, और जो भागेगा उसको उसके पीछे उसको नहीं मिलेगी, नियम उल्टा है। तितली के पीछे भागो भागो भागो, तितली और भागती है। शांत होके बैठ जाओ, यहां आके बैठ जाएगी कंधे पर। दूसरी चीज जो प्रभु प्रेम में चाहिए वो है तीव्र लगन, इंटेंस लगन, अत्यंत तीव्र लगन। जैसी लगन संसार के लोगों को धन के लिए होती है, पैसों के लिए होती है, जमीन के लिए होती है, जैसे राजनेता को सीट के लिए कैसी लगन होती है, दिन रात वही सोचते रहता है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है उसको। जैसे किसी समाज सेवी को कैसी लगन होती है, समाज का कल्याण करो, समाज की सेवा करो। जैसे किसी मां को कैसी लगन होती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, वैसी लगन प्रभु प्रेम की हो। क्या मैं करूं कि जिससे ये प्रभु प्रेम बढ़ जाए? और इसमें एक सूक्ष्म बात समाई हुई है, जितना बीज से प्यार होगा तो पत्तों से अपने आप सहयोग मिलेगा। जितना बीज से कनेक्शन गहरा होगा, आसपास के जो पत्ते हैं उनसे अपने आप प्रेम मिलते रहेगा। बीज से कनेक्शन कम, पत्तों से कनेक्शन कम, डाल डालियों से कनेक्शन कम। तीव्र लगन। तीसरा वैराग्य। प्रभु प्रेम के लिए क्या चाहिए? वैराग्य, ईश्वरीय अनुराग, विषये विराग। यहां की वस्तुएं देखकर वैराग आए, संसार के लोगों को संसार के भोग विलास में डूबते हुए देखकर वैराग आ जाए। क्या कर रहे हैं, समय कौन सा है, कहां अमृत वेले हम बैठ रहे और शरीर से डिटैच होकर भगवान से मिलन मना रहे। ये प्रेम ये सुख एक तरफ, और कहां तो इंद्रियों का सुख तुच्छ नगण्य इस सुख के सामने, कहां तो रात का सन्नाटा है, मौन है वायुमंडल में, और ऐसे वायुमंडल में शरीर से अलग होकर परम धाम में उसमें डूब रहे हैं। ये सुख कहां और वो सुख कहां, वैराग्य। और वैराग्य लाने के लिए बार बार इस संसार के स्वरूप के बारे में सोचना है, चिंतन करना है, है क्या इस संसार में ऐसी वो कौन सी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, खींचती रहती है। कोई भाई मिले थे, कह रहे थे हमारा कोर्ट केस चालू है, 10 साल हो गए जमीन के लिए, भाई ने जमीन ले ली थी, पर ये 10 साल में ना तो ज्ञान हुआ है ना योग, पूरा योग खत्म हो गया, पूरा ज्ञान ही खत्म हो गया है। अमृत वेला करते हैं पर जमीन ही जमीन घूमती रहती है बुद्धि में। क्या करे, हमने कहा छोड़ दो, दे दो उसको जमीन, जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण योग है। हमारी ऊर्जा कहां जा रही है, संकल्प की सूक्ष्म ऊर्जा कहां जा रही है, शरीर की चिंतन में जा रही है, शरीर की बीमारी की चिंतन के चिंतन में जा रही है ऊर्जा, या प्रभु प्रेम के चिंतन में जा रही है। शरीर शरीर शरीर, बीमारी बीमारी बीमारी, बस इसी चिंतन में लगे हुए हैं, या शरीर के ऊपर निकलकर कुछ और चिंतन चालू है। वैराग्य। उसके बाद में चौथा, प्रभु प्रेम के लिए चाहिए तीव्र इंटेंस प्यूरिटी, अत्यंत पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य। जरा भी ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, जरा भी 1%, 0.1%, जरा भी शरीर आंखें देह को देखने के लिए लालयित है तो प्रभु प्रेम कम रहेगा। देह से ऐसा वैराग, आंखों में ऐसी प्यूरिटी समाई हो, ऐसा वैराग समाया हुआ हो कि शरीर देखते हुए भी न देखे। यथार्थ याद, कल की मुरली थी ना, यथार्थ याद अर्थात शरीर ही भूल जाए, अपना भी और दूसरों का भी, आत्मा समझकर जो याद की जा रही वो है यथार्थ याद। देहवान आते ही विकारों की चेष्टा होती है, इंटेंस प्यूरिटी। क्या लाना है अपने अंदर, प्यूरिटी, कूट कूट के प्यूरिटी भरनी है। ऐसी वो चीज, ऐसी हर वो बात, ऐसा हर वो संबंध, ऐसी वो हर याद जिसमें विकारों की बदबू है, विष की तरह त्याग कर देना है उसका, उखाड़ के फेंक दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम नकार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, तो अपने अंदर वो प्यूरिटी लानी है। जब तक ऐसी प्यूरिटी नहीं होगी तब तक कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहेगी। और प्यूरिटी के लिए रोज दो काम करने हैं, एक अपने आप से प्रतिज्ञा और दूसरा बाबा से प्रतिज्ञा। किसकी प्रतिज्ञा, प्यूरिटी की प्रतिज्ञा। कब करेंगे, अमृत वेला। अमृत वेला अपने अंदर इतनी प्यूरिटी भरनी है, और प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है। इस संसार की सर्वोत्तम दवाई जो है वो प्यूरिटी है। दादी जानकी कहती है, मैं अपने शरीर को रोज 5 मिनट सकाश देती हूं सुबह सुबह। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में पूरी प्यूरिटी की ऊर्जा बह रही है, सारा शरीर निरोग हो रहा है, हीलिंग पावर है, उपचारक शक्ति है पवित्रता में। अगला, प्रभु प्रेम के लिए चाहिए नष्टो मोहास्थिति, नष्टो घृणा भी और नष्टो मोहा भी, किसी से मोह भी नहीं और किसी से नफरत भी नहीं, दोनों चीजें जोड़ दो। नहीं तो नष्टो मोहा तो है पर सबसे। एक चर्च में फादर ने पूछा, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने अंदर बदले का भाव नहीं रखते अपने दुश्मनों के लिए? तो एक ही ने हाथ खड़ा किया कि जिसके अंदर कोई बदले का भाव नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति था एक, बाकी सबके हाथ नीचे थे, मतलब सबके अंदर बदले का भाव था। तो उसको पूछा गया, क्या भाई कैसे, आपने सबको माफ कर दिया अपने दुश्मनों को? बोले माफ नहीं, हो सब मर गए, जितने दुश्मन थे सब मर गए, अब किसके लिए बदले का भाव रखूं? ऐसा नहीं, किसी के लिए भी नहीं। घृणा, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, इसने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, हमारे अंदर नफरत है। पत्नी कहती है कि मेरा पति ज्ञान में नहीं आता है क्योंकि वो शराब पीते रहता है, उसकी शराब छुड़ाओ, क्या करूं? पर उस पति के लिए उसके मन में कितनी नफरत समाई हुई अंदर से। जब तक वो नफरत नहीं निकलेगी वो ज्ञान में भी नहीं आएगा, वही बाधा है सबसे बड़ी। एक तरफ कह तो रही है कि इसको ज्ञान में लाना है, पर नफरत कितनी है, सूक्ष्म नफरत भरी है उसके प्रति। उसी तरह माँ बाप के लिए, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए ये नहीं किया बचपन में, वो नहीं किया, हाँ पर उनका कल्याण हो जाए, नहीं होगा, तुम ही बाधा हो। कोई ये मानता नहीं है कि मुझ मेरे अंदर भी नफरत भरी है, पर सूक्ष्म में नफरत है, घृणा है, डिसलाइक है। आत्माओं को हमने माफ नहीं किया है, भूले नहीं है। तो प्रभु प्रेम के लिए क्या चाहिए, नष्टो मोह और नष्टो घृणा अवस्था। उसके बाद में त्याग और तपस्या, अविनाशी त्याग और तपस्या। प्रभु प्रेम के मार्ग में जो निकल पड़ा है उसे बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो श्रीमत के विरुद्ध है। वो हर चीज से विमुख होना होगा, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो चीज जो हमें भगवान से जुदा करे, विष की तरह उसका त्याग कर देना है। संकल्प की आवश्यकता है, एक संबंध बना के रखा है किसी आत्मा से और वो अपनी ओर खींचता है, वो मोह का संबंध है, भगवान से अलग कर देगा धीरे धीरे, भगवान से, उसके घर से, इस परिवार से, यज्ञ से आउट कर देगा एक दिन। उसके बाद में लविंग सरेंडर, प्रेम अर्थात समर्पण, अपनी जान दे देना। दूसरे युद्ध में दिखाया हुआ है, महायुद्ध में एक सैनिक घायल हो जाता है, बाकी साथी भाग के आते हैं, उसका एक मित्र कहता है मैं जाऊंगा उसे बचाने, उसके अफसर, उसके सब बड़े उसको समझाते मत जाओ, जान तुम्हारी खतरे में है, वो तो मर गया, वो नहीं जिएगा, वो जिस तरह से घिरा गया है नहीं जिएगा। वो कहता है मैं जाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, फिर भी जाता है। और दिखाया है वो खुद घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है और अपने दोस्त की डेड बॉडी अपने कंधों पर लिए हुए आ रहा है, आता है आता है और गिरता है। उसके साथी और अफसर कहते हैं देखा हमने बोला था ना तुमको, वो तो मर गया, फिर भी तुम उसको बचाने गए और खुद भी मर रहे हो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं जब गया तो मेरा वो दोस्त जिंदा था, बस अब मरने की हालत में था और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे कहा, जिमी आई नो दैट यू विल कम. उसका नाम जिमी होता है. वो कहता है मुझे पता था तुम आओगे. और मैं पहुंच गया और मेरी गोद में उसने प्राण छोड़े और फिर मुझे भी गोली लगी और फिर दोनों मर जाते हैं. प्रेम अर्थात समर्पण, प्रेम अर्थात बलिदान, सैक्रिफाइस. वो प्रेम कैसा प्रेम है जिसमें बलिदान ही ना हो. हम तुमसे प्रेम करते हैं पर वो कहता है तुम्हें वो वस्तु पसंद नहीं है पर हम उसको पकड़ के, ये प्रेम थोड़ी है. प्रेमी को जो पसंद है वो करना, जो नहीं पसंद उसे छोड़ देना, ये है सच्चा वास्तविक प्रेम. प्रेम अर्थात अगली परिभाषा या अगला आधार, एक बाप दूसरा ना कोई. एक उसी को अपने जीवन में स्थान रखा है, दिया है, बाकी सब ऊपर ऊपर के. एक उसी से प्यार. अगला प्रेम अर्थात संपूर्ण निर्विकारिता, वाइसलेसनेस, 100% वाइसलेसनेस. जरा भी विकार का आकर्षण, अंश नहीं. निर्लोभी, आज के मुरली में था ना, निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी, यह अवस्था. ऐसे जो बच्चे हैं बाबा को बहुत प्रिय है. और लास्ट निश्चय, 100% निश्चय. ये सारी बातें 100% संपूर्ण निश्चय. इतना निश्चय कि मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक वो मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया मेरे साथ है. आज इसी मुरली में बाबा ने हिम्मत की भी बात कही है. क्या कहा है उसमें अमित भाई, हिम्मत के लिए? ये वाली अभी जो वैलेंटाइन डे की मुरली 92 की, हिम्मत की भी बात की है. हिम्मत नहीं है अगर बाप तुम्हारे साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने आ जाए. कुछ नहीं हो सकता तुमको. लवर अर्थात सहयोगी. तो ऐसी अवस्था हो तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सच्चा प्यार हो तो ऐसी प्यूरिटी, ऐसा एतबार, ऐसा निश्चय, ऐसी लगन, ऐसी इच्छा मात्र अविद्या की अवस्था, ऐसी एक बाप दूसरा ना कोई की अवस्था अंदर निर्माण करनी है. और ये सारा करने का आधार है अमृत वेला. जितना अमृत वेला शक्तिशाली उतना दिन शक्तिशाली, जितना अमृत वेला कमजोर दिन कमजोर. अमृत वेले उठते ही पहला संकल्प मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, दिन शक्तिशाली. अमृत वेला उठते ही पहला कोई संकल्प नहीं, अपने आप देहभान के संकल्प आ जाएंगे. अगर आत्मा अभिमानी के संकल्प नहीं है तो, और देहभान दिन भर चलेगा, यहां के घंटे वहां के जन, यहां के घंटे कम तो वहां के जन्म कम. जैसे वो सृष्टि का आदिकाल है सतयुग, ये दिन का आदिकाल है. तो प्रभु प्रेम से अपने आप को भरना है. गीत में सुना, ये दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है. ये संसार के जो प्रेमी होते हैं उनकी अवस्था है. उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वही वही घूमते रहता है. वो कौन है जो आकर खाबों पे छा गया है. मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद लाकर क्यों दूर जा रही है. दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है. वो कौन है जो आकर खाबों पे छा गया. बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के. ये दिल जरा समझ जा शायद वो आ गया है. वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया. भीगी हुई हवाएं मौसम भी है गुलाबी, क्या चांद क्या सितारे हर तीर है शराबी. धीरे से एक नगमा को ही सुना गया है. वो कौन है आकर. तो ऐसी अवस्था कि जिसमें लगन हो, तात हो, ओना हो, बस उसी का चिंतन हो, वो हमारा द डिवाइन वैलेंटाइन है. एक माशुक तो उसके प्यार में खो
हो जाना है। ओम शांति।
धीरे से एक नगमा।